मैं पूरा सवाल रिपीट नहीं करूंगी। एक तो ज़कात के बारे में है, ज़कात और टैक्स को आपने कुछ रिलेट किया हुआ, मैंने आपको पूरा सुना था। उसमें आपने ये कहा था इस्लामिक कंट्री, तो इस कंट्री में भी वही चीज चलेगी? आपने जो टैक्स के
जी मैं समझ गया। देखिए ज़कात के बारे में एक गलत फहमी है जिसको मैंने कोशिश की है कि रफ़ा करूँ, और उस पर बहुत गुफ्तगुएँ की हैं, वो टेलीविज़न के बाद मुज़ाकरों में भी हैं, वो मेरी किताबों में भी हैं, हर जगह हैं। वो गलत फहमी ये है कि लोग समझते हैं ज़कात चैरिटी है, ये बिल्कुल गलत बात है। ज़कात असल में अल्लाह ताला की तरफ से जो हुकूमत को आपसे लेने का हक है वो मुकर्रर कर दिया गया है। यानी सबसे बड़ा मसला जो हुकूमतों के दरमियान, हुकूमत इंसान की ज़रूरत है, यानी उसके बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। इंसान चूँकि अपने इरादे को गलत इस्तेमाल करता है, तो पहले दिन से ये फैसला किया गया कि कोई हुकूमत का वो कबायली सतह की हो कायम होनी चाहिए, उसको चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और हुकूमत की कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। तो इसमें ये सवाल पैदा होता है कि फिर हुकूमत क्या कंट्रीब्यूशन पर इन्हिसार करेगी? यानी आप चाहें तो आज चेक लिखें और चाहें तो ना लिखें, क्या ऐसे चल सकती है? तो लोगों ने कहा कि नहीं, बादशाहों को इख्तियार है कि वो ज़बरदस्ती आपसे ले लें। अल्लाह ताला ने इसको तस्लीम नहीं किया और ये कहा है कि किसी की जान माल और इज्जत के खिलाफ ज़बरदस्ती कोई इकदाम करने का हक किसी को भी नहीं। लेकिन फिर कैसे चले? तो अल्लाह ताला ने फैसला किया कि मैं मुकर्रर कर देता हूँ। तो ज़कात असल में अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर करदा हक के हुकूमत है। यही वजह है कि जब मुसलमानों को हुकूमत हासिल हुई, तो आपके इल्म में है कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो शरायत बयान की गई वो सूरह तौबा में है, उसमें ये बता दिया गया था कि हर वो शख्स जो इसका शहरी बनेगा उसको ज़कात देना होगी, और किसको देना होगी? हुकूमत को देना होगी। रसूलुल्लाह सल्लम के बाद अरबों ने हुकूमत को देने से इनकार कर दिया, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने उसको हुकूमत के ख़िलाफ़ जंग से ताबीर किया और कार्रवाई करने का फ़ैसला कर लिया, और ये कहा कि मैं अगर एक रस्सी भी ऊँट की इससे पहले दी जाती रहे थी और अब लोग नहीं देंगे तो मैं वो लूँगा उनसे, इसलिए कि उसके बगैर हुकूमत नहीं चल सकती। तो ये हुकूमत ही का हक है। लेकिन अल्लाह ने एक दूसरा काम ये किया कि हुकूमत के इस हक को अपनी इबादत बना दिया, और इसमें जो रूह पैदा कर दी वो क्या है कि गोया मैं अपने माल की ज़कात निकाल के अल्लाह की नज़र कर देता हूँ और फिर अल्लाह के हाँ से उठाकर हुकूमत को दे देता हूँ। तो ये जो रूह उसमें पैदा की गई, उसके साथ ही ये भी ज़रूरी करार दे दिया गया कि अगर हुकूमत ना ले तब भी तुम्हें माशरे की ज़रूरतों के लिए इसको दे देना चाहिए। ये यूँ है, आप मेरी किताब मीज़ान में देखिए जो पूरे इस्लाम को बयान करती है, तो मैंने उसमें ज़कात को मईशत और सियासत के बाद में नहीं बयान किया, इबादत के बाद में बयान किया। ये असल में इबादत है, लेकिन इस इबादत को जिस तरह जुमे की नमाज को रियासत से रिलेट कर दिया गया है, इसी तरह इस इबादत को रियासत से मुतल्लक कर दिया गया है। तो अब कानून क्या हुआ? कानून ये हुआ कि आपको हर हाल में ज़कात निकालनी है, उस शरा के मुताबिक निकालनी है जो अल्लाह ने मुकर्रर की है। उसमें यह गलत फहमी है कि वह सिर्फ 2.5% होती है, 2.5% वो बचत एसेट्स और माल में होती है, वो पैदावारी चीज़ों में 5, 10 और 20% होती है। तो आपको हर हाल में निकालनी है, अगर हुकूमत लेगी तो उसको दे देंगे, हुकूमत नहीं लेगी तो अपने तौर पर उन चीज़ों पर खर्च कर देंगे जिन पर अल्लाह ने खर्च करने की तरगीब दी है। यानी वही लोगों की बहबूद के मामला, किसी गरीब को दे दें, मिस्कीन को दे दें, एजुकेशन में दे दें, जो हुकूमत काम करती है उन्हीं कामों के लिए आप इनफरादी तौर पर दे देंगे। असल कानून ये है। इसके बाद अब ये सवाल पैदा होता है कि हुकूमत अगर सिर्फ मुसलमानों की हो, मुसलमानों की हुकूमत है, तो उसका फ़र्ज़ है कि वो ज़कात ले और टैक्स ना ले, और हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसको अदा कर दें। लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिमों की हुकूमत भी वो सारे काम हमारे लिए कर रही है, यानी गैर मुस्लिम अक्सरियत की हुकूमत है, और वो भी वो सारे काम कर रही है कि जो अल्लाह ताला चाहता है कि एक अच्छी हुकूमत को करने चाहिए, तो उसको भी देने में कोई हर्ज की बात नहीं। यानी इसमें कोई मज़हब की पाबंदी नहीं लगाई गई, वो दे दें आप। आपसे मौजूदा हुकूमतें, खा वो मुसलमान हुकूमतें हैं, खा वो गैर मुस्लिमों की अक्सरियत की हुकूमतें, वो टैक्स लेती हैं। इस वजह से आपको हक हासिल है कि चूंकि वो अल्लाह के कानून की पाबंदी करते हुए सिर्फ ज़कात नहीं ले रही, तो आप अपनी ज़कात उसमें एडजस्ट कर लें। जब आपने वो दे दिया तो हक आपका अदा हो गया। लेकिन ज़कात को कैलकुलेट आपको अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक अलग से करना होगा, ताकि उसकी हकीकी अमाउंट क्या है, क्या रकम है, वो मालूम हो जाए। वो अगर $5,000 है और आपकी हुकूमत ने आपसे 10 ले लिए हैं तो अदा हो गई, اور اگر کم لیے ہیں تو آپ کو ادا کرنا ہے. تو یہ بات ہے جو میں نے پوری کی پوری آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. میرے نزدیک جو بدلے ہوئے حالات ہیں ان میں سے بعض چیزوں میں اپلیکیشن میں ہمارے علماء چونکہ خاص طرح کی ذہن میں جی رہے ہیں وہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. میں نے صرف یہ کیا ہے کہ ان حالات کے اندر اسلام کے انطباق یا اس کی اپلیکیشن کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ہے اصل حکم, یہ اس کی نوعیت ہے. یہ اصل حکم بھی بتانے کی ہمارا عالم پوزیشن میں نہیں رہا, یعنی وہ اس بات کو بھی بیان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ اصل میں ہے کیا, کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کی شرح کیا ہیں. جہاں میں جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں 2.5% ہوتی. بھائی یہ عشر کیا ہے؟ عشر عربی میں 10% کو کہتے ہیں. یہ خمس کیا ہے؟ یہ عربی میں 20% کو کہتے ہیں. یہ ساری زکوٰۃ ہی ہے. یعنی زکوٰۃ کی کچھ شرح وہ ہیں جو آپ کے ایسٹ سے کے بارے میں ہیں, سونا ہے چاندی ہے آپ کا کوئی پلاٹ ہے. زکوٰۃ کی کچھ شرح ہیں جو آپ کی پیداواری یونٹس کے بارے میں ہیں, یعنی آپ کی زرعی زمین سے پیداوار ہو رہی ہے, آپ کی صنعت سے انڈسٹری سے پیداوار ہو رہی ہے, آپ کے کسی پلازا سے کسی عمارت کے کرائے سے پیداوار ہو رہی ہے, آپ کی سیلری سے پیداوار ہو رہی ہے, آپ ڈاکٹر ہیں آپ کی فیسوں سے پیداوار ہو رہی ہے, ان سب میں 5%, 10% اور 20% ہے. تو یہ پوری کی پوری بات کو میں نے بہت جگہ بڑی تفصیل سے بیان کی ہے, تو آج راہ کرم اس کو سمجھ لیجیے.